हरे कृष्णा। नए साल की खुशी में कई भक्त खुशियां मनाते मनाते श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं आए गए, इसलिए आज मंदिर थोड़ा खाली सा लग रहा है। वास्तव में नए साल के बारे में खुशखबरी क्या है? ऐसी कौन सी नई चीज है इस नए साल में? वही चीजें होती रहेंगी, वही दुख, वही कष्ट, वही समस्याएं। केवल कृष्ण भक्ति एक चीज है जो हमको जीवन में ताजगी देती है, जो जीवन में रहने के लिए एक उत्साह देता है, प्रेरणा देता है। कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं हमेशा ताजे रहते हैं, फ्रेश। बाकी सब कुछ इस संसार का वस्तु सब सड़ जाता है समय से। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यर्त यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, अपना समय श्री कृष्ण के कथा में व्यतीत नहीं करता, उसके लिए हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त केवल मृत्यु के एक दिवस करीब जाने का मार्ग है। समय की कोई कीमत नहीं उसके लिए। लेकिन कृष्ण भक्त के लिए, क्योंकि वो ज्यादा समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, उनकी कथा गुणगान में बिताता है, इसलिए उसके लिए हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो एक निमंत्रण है, स्वागत है भगवान के धाम में जाने के लिए। भगवान के धाम के दरवाजे खुल रहते हैं ऐसे भक्त के लिए। तो मान लो कि भगवान का भक्त वैकुंठ धाम में जाने के लिए मार्ग पर चल रहा है, और जैसे जैसे एक दिन एक रात बीतते जाता है वैसे वैसे उस द्वार के करीब वो पहुंचते जाता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो गोल गोल घूमते हैं यहां इस भौतिक जगत से, खास करके पृथ्वी लोक से लेकर वैकुंठ लोक तक एक सीधा राजमार्ग है, और इस मार्ग में चलना बहुत आसान है। भागवत में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर आंख बंद करके भी चले तो आसानी से चल सकता है। अगर फिसल जाए, गिर भी जाए, फिर भी कोई नुकसान नहीं है उसको इस पथ में। यह है भक्ति मार्ग। ऐसा नहीं है कि भक्तों को कोई कठिनाई नहीं आती भक्ति करते करते, लेकिन फिर भी ये भक्ति मार्ग इतना सुलभ है, इतना अच्छा है कि अगर फिसल भी जाए भक्त, फिर भी उसके लिए कोई नुकसान नहीं होता है, और सीधे वो वैकुंठ धाम की ओर प्रगति करते रहता है, आगे जाते रहता है, और अंततः भगवान के धाम में प्रवेश कर देता है। जो भगवान के भक्त नहीं है वो भी एक राजमार्ग में जा रहे हैं, लेकिन वो राजमार्ग कैसा है? वो राजमार्ग गोल घूमने वाला मार्ग है। आप में से कोई भक्त दिल्ली गए हैं? दिल्ली गए हैं कोई? तो दिल्ली में एक रास्ता है जिसको रिंग रोड कहते हैं, सारे शहर को घेर लेता है। उस रिंग रोड पर चलिए, गोल 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 घूमते रहेंगे। आप सोचेंगे अरे इतने किलोमीटर हम चलते रहे, नहीं, कितने सालों तक भी चलते रहे अगर वो रास्ता आपने छोड़ा नहीं तो दिल्ली के गोल 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 घूमते रहेंगे। तो उसी प्रकार से जो अभक्त हैं वो इस संसार के रिंग रोड पे चल रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी में, फिर से नरक में, फिर पृथ्वी, फिर स्वर्ग, इस तरह से गोल 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 घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। ये है संसार चक्र। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के वैज्ञानिक ने, वो गणित गणित में ज्यादा निपुण थे, उनका नाम था रामानुजम। आपने नाम सुना है उनका, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, केवल 10वीं पास किया था, और वो भी अच्छी तरह से पास नहीं हो सके, फेल हो गए वो भी गणित में। क्योंकि जब उनको एक कोई चीज दिया गया था गणित के परीक्षा में, उन्होंने वही समस्या का समाधान अनेक तरीकों से किया, सारा पेपर जो उसी में भर दिया। एक गणित का जो समस्या दिया हुआ था, वैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक तरह से उसका समाधान निकालते फिर आगे जाते हैं अगले प्रश्न में। ऐसे कई प्रश्न होते हैं, 6, 7, 8, 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन यह एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से उन्होंने उसका समाधान कर दिया और घंटों तक ऐसे लिखते रहे। तो जो अध्यापक है उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई विचित्र है, लेकिन फिर भी केवल उनको एक सवाल का नंबर मिल गया, मार्क्स मिल गया, बाकी में तो उन्होंने लिखा ही नहीं था, तो फेल हो गए गणित में। तो कहीं एक दफ्तर में वो क्लर्क का काम कर रहे थे, और वहां जो अंग्रेज एक व्यक्ति आए थे, बड़े व्यक्ति, उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे कागज में बड़े बड़े गणित के सब चीजें लिख रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसकी बड़ा बुद्धिमान है आदमी। तो फिर उन्होंने सिफारिश करी इसकी और उनको इंग्लैंड भेज दिया, बड़े विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, ऐसे कुछ बड़े विश्वविद्यालय में भेज दिया गणित सीखने के लिए। और वहां भी जो बड़े व्यक्ति थे सब विश्वविद्यालय के अध्यापक, उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है साधारण नहीं है, इसकी बुद्धि तो बड़ी अद्भुत है। जल्दी से इसने प्रगति कर ली। एक दिन बीमार हो गया रामानुजम, बीमार हो गए तो विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती हो गए। तो भर्ती हो रहे थे तब उनके एक अध्यापक थे, प्रोफेसर, जो भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वो वहां पर आए और उन्होंने देखा कि रामानुजम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं अपने बिस्तर में हॉस्पिटल में। उन्होंने पूछा, ये कौन सी किताब है? तो उन्होंने बोला, ये भगवद गीता है। अच्छा, भगवद गीता ये क्या है? ये भगवान का किताब है, एक आध्यात्मिक पुस्तक है। अच्छा अच्छा, हमारे बाइबल की तरह है क्या? हाँ, उसी तरह है, लेकिन हमारे समाज की किताब है, बहुत ऊंचा ज्ञान है इसमें। तो उन्होंने पूछा, क्या लिखा है इसमें, क्या समझते हो इस किताब को पढ़ के, यहां कुछ इस जगत के बारे में कुछ बताया है क्या इसमें? तो रामानुजन ने कहा, हाँ बहुत बहुत बताया है, लेकिन इसका सार ये है कि ये भौतिक जगत एक बड़ा शून्य है। क्योंकि ये सब गणित के गणितकार थे ना सब, तो गणित की भाषा में बोलना था उनको। बोले, ये जगत बड़ा शून्य है। शून्य क्या है? शून्य में क्या मतलब? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ऐसे चक्कर में हम घूम रहे हैं, गोल गोल गोल, जैसे हम बोल रहे थे रिंग रोड। हम ये जगत में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं और इसका कोई अंत नहीं। और इतना ही नहीं, ये तो हमारा इतिहास है इस जगत में, परंतु इस भौतिक जगत का इतिहास भी ऐसे है। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये भी चक्र में घूम रहा है। और इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी हम देखते हैं, ठंडी फिर गर्मी, बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, चक्र। यहां सब कुछ परिवर्तनशील है और सब कुछ एक चक्र में घूम रहा है, गोल 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 गोल, एक बड़ा शून्य है। तो इस जगत में हमारा जो भी कुछ है वो एक बड़ा शून्य है, और इसलिए हमको इस जगत से ऊपर कुछ जानना चाहिए, वो इस भगवत गीता में बताया हुआ है। इस तरह से रामानुजम वो एक श्री वैष्णव संप्रदाय के थे, उनका नाम ही था रामानुजम, तो वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और भगवत गीता को बहुत मानते थे, और इसलिए उन्होंने बड़े अच्छी तरह से ये बताया कि ये जगत की पहचान क्या है। ये जगत है एक शून्य। यही रामानुजम जब हॉस्पिटल में थे तो उनको एक उनका भोजन लाया गया उनके सामने, और प्लेट में कुछ था, ऐसे लंबा सा कुछ था, तो उनको सोचा अरे ये क्या है। तो उन्होंने उस नर्स को पूछा कि ये क्या दिया मुझे थाली में। उन्होंने बोला ये चिकन है। बोले चिकन क्या ये खाना पड़ेगा मुझे? हाँ ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है मेरे स्वास्थ्य का तो ठीक है, लेकिन ये चिकन का स्वास्थ्य का क्या होगा? उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो नर्स को गुस्सा हो गया, गुस्सा आया। उन्होंने बोला देखो ऐसे से बातें करने हैं तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, हमसे बात नहीं। तो रामानुजम एकदम अच्छे वैष्णव परिवार से आते थे, तो उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, ये सब चीजें खाना पीना। तो इस तरह से रामानुजम ने हार्डी नाम के उस वैज्ञानिक को अच्छी तरह से पहचान करा के दी कि ये संसार क्या है। तो यहां जो भौतिक लोग हैं वो घूमते रहते हैं, उनका जीवन शून्य है, कुछ भी हो उनके पास लेकिन गोल 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 वही चीज घूमते रहते हैं। पुनः चर्वित चर्वणानाम, कभी भी भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं, कोई रुचि नहीं है। मतुर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो भिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो लोग कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, जिनकी मति कृष्ण में नहीं है, कृष्ण मतिर न कृष्ण, कृष्ण मति उनकी नहीं है, मति मतलब बुद्धि या रुचि या झुकाव, तो ऐसे लोगों को खुद के प्रयास से या दूसरों के प्रयास से या दोनों को मिलकर दोनों के प्रयास से उनको कृष्ण भक्ति नहीं आती। वो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, पदांत गोभीर विषतांत मिश्रम, इसलिए नरक की ओर चल पड़े हैं। केवल उन चीजों में रुचि लेते हैं जो उन्होंने पहले भी किया हुआ है। पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना, वही चीज चबा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, जो पहले कितने बार चबा चुके हैं, चबाते 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 कोई नया स्वाद नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक दूसरा चक्र है, शून्य, वही गोल गोलाकार। ये जीवन में आकर भी वही चीज, जन्म लेना, फिर थोड़ा बड़ा होना, फिर परिपक्व होना, फिर उत्पन्न करना कोई संतान इत्यादि, फिर बूढ़ा हो जाना और फिर मर जाना, और इस दौरान वही पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना, वही चीज जो हम पहले चख चुके हैं, स्वाद जिसका ले चुके हैं, फिर से पुनः 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 वही चीज। तो ये है संसार, कोई नई बात नहीं है। तो नए साल में आने के बाद भी क्या नई बात होगी? हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, न्यू ईयर तो है नहीं, वही पुराने काम चलेंगे, पुनः चर्विता चर्वणानाम, तो वही चीजें चलती रहेंगे, वही इंद्र तृप्ति। अगर हमारे साल को नवीन बनाना है वास्तव में, तो हमें कृष्ण भक्ति लानी चाहिए। कृष्ण भक्ति क्योंकि हमेशा तेज है, ताजा है, इसलिए जो कृष्ण भक्ति करता है वो भी हमेशा, उसका मन भी ताजा रहता है, उसका चित्त ताजा रहता है। इसलिए इस युगादि या गुड़ी पाड़वा के दिवस पर सबको कृष्ण मंदिर आके यहां कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम अलग अलग अनुष्ठान में उधर उधर व्यस्त हो गए नए साल के खुशी में, तो फिर हमें सच्ची खुशी कभी नहीं मिलेगी। तो सच्ची खुशी प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण भक्ति या भक्तों के संग में आना चाहिए। तो भक्ति के कई नियम के बारे में हम चर्चा करते आए हैं कई रविवारों से, समाप्ति नहीं हो रहा है, क्या करें, लेकिन समाप्त होने तक करते जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा अभी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने ऐसे कई सुंदर नियम बताए हैं हमारे हित के लिए, जिनका पालन करके हम बहुत शीघ्र ही भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। पिछली बार हम यहां पर रुके हुए थे कि किस तरह हर हालत में शरणागत बनना भगवान के चरण कमलों में, शरणापत्ति ही, और हमने देखा था कि किस तरह केवल भगवान के शरण में जाना या अपने सब चीजें भगवान को अर्पण करना इतना काफी नहीं है, लेकिन वो भावना की तीव्रता होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आगे चल के रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगला नियम क्या है। तुलसी के पौधे को सींचें। हर एक घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा जगह जगह हर घर में होनी चाहिए। आप में से कितने भक्तों के घर में तुलसी महारानी है, हाथ ऊपर कीजिए। आप रोज सेवा करते हैं तुलसी महारानी की? कम से कम दर्शन तो करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और थोड़ा जल अर्पण करना चाहिए। अच्छा ये होगा कि सुबह शाम जल अर्पण करें, दीप अर्पण करें, प्रणाम करें और तुलसी के पत्तों को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करें। सर्वश्रेष्ठ सेवा तुलसी देवी की। स्कंद पुराण में तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन है बहुत विस्तार में। वहां बताया गया है कि तुलसी सर्व मंगलमय है। तुलसी के बारे में केवल सोचने से, तुलसी को देखने से, तुलसी के बारे में सुनने से, तुलसी का स्मरण करने से, तुलसी देवी की स्तुति करने से, तुलसी देवी को जल अर्पण करने से, तुलसी महारानी को दीप अर्पण करने से, या किसी भी तरह से अगर हम तुलसी महारानी के संपर्क में आए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है और हम वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए पात्र बन जाते हैं केवल तुलसी की सेवा करने से। स्कंद पुराण में एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी देवी, आपका जय हो, मैं आपका नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप अकेले ढेर सारे पापों को नष्ट कर सकती हैं। जो व्यक्ति केवल आपको देखता है या आपके बारे में स्मरण करता है तो उसके जीवन में कोई दुख या बीमारी चली जाती है, और जो व्यक्ति आपके सामने आपके जल अर्पण करता है या आपको प्रणाम करता है उसको तो कभी यमराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता, यमलोक नहीं जाना पड़ता उसको, आप वो सुरक्षा देते हैं उसको। तो आजकल लोग जीवन बीमा करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, योग क्षेमा, तो सोचते हैं कि जीवन बीमा करने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। हम नहीं होंगे, हमारे पीछे रहने वाले जो हैं उनकी सुरक्षा थोड़े बहुत आर्थिक दृष्टि से हो सकती है, लेकिन आगे चल के हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो आखिर में हमारे जीवन बीमा निकालना है तो आने वाले जन्म की बीमा निकालनी है। तो ऐसे भक्ति के कार्य करने से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कि कम से कम हमें यमराज के दरबार में नहीं जाना पड़े, यमराज की डांट नहीं सुननी पड़े, नरक लोक का दर्शन नहीं करना पड़े। तो भगवान ने इतना आसान कुछ बना दिया है, रोज तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी के सामने दंडवत करना या कम से कम हाथ तो जोड़ लेना, इतना तो हम कर सकते हैं रोज। तुलसी के सामने केवल झुकना या प्रणाम करना इतना लाभदायक है कि अगर हम ऐसा रोज करते रहें तो यमराज हमको छू नहीं सकते हैं। बोलिए, अब वो व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, जो प्रधानमंत्री हो, राजा हो, राष्ट्रपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, वो भी यमराज के पाश से छूट नहीं सकता है। परंतु एक साधारण व्यक्ति, अनपढ़ भी हो, गरीब भी हो, लेकिन वो रोज तुलसी महारानी की सेवा अगर करे तो उसके हृदय में वो कृष्ण भक्ति बन सकता है और यमराज उसको छू नहीं सकते। और स्कंद पुराण में बताया है कि जो व्यक्ति ऐसे रोज तुलसी को जल देगा, तुलसी की सेवा करेगा, निश्चित रूप से वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर भक्ति भावना से रोज तुलसी के पत्तों को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करेगा तो पूरी तरह से उसके हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम का विकास हो जाएगा। क्योंकि तुलसी के पत्तों का अर्पण श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। हम सुन चुके हैं गौर पूर्णिमा के समय कि अद्वैत आचार्य ने केवल इस तरीके से आह्वान किया, बुलाया कि श्री कृष्ण आप यहां अवतार लीजिए। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गंगा जल लिया, तुलसी का पत्ता लिया और उन्होंने अपने शालिग्राम शिला को अर्पण किया। शालिग्राम शिला की पूजा ये बहुत ही सरल है और शालिग्राम शिला कोई अपराध स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी कर सकता है। ये भगवान विष्णु के रूप हैं, नेपाल में गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आज नहीं सुनाएंगे और कभी, जो पुराणों में जिसका वर्णन है। परंतु भगवान विष्णु यहां एक शिला, शालिग्राम शिला के रूप में हैं, विराजे हैं। और शालिग्राम शिला और तुलसी महारानी साथ साथ में हैं। गंगाजल और तुलसी महारानी के पत्ते अगर शालिग्राम शिला को अर्पण किए जाएं तो भगवान विष्णु या कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कई भक्त हैं जो कि रोज अपने घरों में शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, हमारे संस्था में भी। वैदिक संस्कृति में यह अनिवार्य है कि हर एक ब्राह्मण के घर में कम से कम शालिग्राम शिला होनी चाहिए, चाहे वो वैष्णव हो या न हो। हर एक ब्राह्मण शालिग्राम शिला की पूजा अवश्य करते हैं या करते थे, आजकल तो अलग बात है। लेकिन ऐसे शालिग्राम शिला की पूजा करने से उनको बहुत लाभ मिलता था। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसके घर में शालिग्राम शिला नहीं हो तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी। और जहां शालिग्राम शिला है वहां तुलसी महारानी घर में तो होनी ही होनी है, नहीं तो तुलसी के पत्ते आएंगे कहां से। तो इस तरह से तुलसी महारानी को शालिग्राम शिला की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है। और तुलसी महारानी ऐसे केवल वैष्णवों के घरों में नहीं, स्मार्थों के घर में भी। स्मार्थ मतलब जो केवल कर्मकांडी हैं, जो शैव हैं या जो वैष्णव नहीं है, ऐसे लोगों के घर में भी पाया जाता है। आज भी यह प्रथा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज शहरों में बड़े बड़े मकान हो गए हैं, 5, 6, 8, 10 मंजिलों वाले, लेकिन फिर भी ऐसे अवस्था में भी हम देखते हैं कि कई ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो अपने घरों में ऐसे बड़े बड़े इमारतों में भी तुलसी महारानी को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये बहुत कम होते जा रहा है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, भगवान ने हमारे लिए कितने सुलभ 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 मार्ग बताए हैं, अति सुलभ मार्ग बताए हैं इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, केवल एक पेड़ का, एक पौधे का दर्शन करने से अगर ढेर सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो कौन मूर्ख व्यक्ति है जो इसका फायदा नहीं लेगा। केवल एक पेड़ का, पौधे का दर्शन करो रोज, बाकी सेवा की बात तो दूर है। लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों की संस्कृति में, आधुनिक संस्कृति में ये भी आजकल नहीं है। ये भी जो प्रथा जो है वो नष्ट होती जा रही है। तो कितना जरूरी है कि हम तुलसी महारानी की सेवा करें। अद्वैत आचार्य ने जब श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आपको यहां प्रकट होना है, तो शास्त्रों का, एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। उन्होंने कहा कि तुलसी दल मात्रेण, दल मतलब पत्ता, अगर केवल मात्रेण केवल अगर हमने तुलसी का पत्ता लिया, हाँ तुलसी के मंजरी भी साथ में रहेंगे तो और भी भगवान प्रसन्न होंगे। तुलसी के मंजरी, तुलसी के पत्ते, साथ में क्या, जलस्य चुरुकेण वा, थोड़ा सा जल अपने मुट्ठी में लीजिए, गंगा जल, शुद्ध जल, और ये दोनों अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि इतना ऋणी हो जाते हैं कि बोलते हैं विक्रीणते स्वम आत्मानम, मैं अपने आप को बेच डालता हूं। विक्रीणते किसके प्रति बेच डालते हैं वो, भक्तेभ्य भक्तवत्सल, भक्तों को। तो भक्त, भक्तों का जो बहुवचन है वो भक्तेभ्य है, तो भक्तों को मैं अपने आप बेच डालता हूं क्योंकि मेरा नाम है भक्तवत्सल, मैं भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं, भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं, तो भक्त लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, भक्ति कठिन नहीं है, बहुत सुलभ है। देखिए कितना सुलभ, केवल तुलसी पत्ता और थोड़ा जल अर्पण करें रोज भगवान को, भगवान खुश। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम, ये पत्र मतलब प्रभुपाद समझाते हैं तुलसी पत्र, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है, तद अहम भक्त उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः, क्योंकि ये भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ है तो मैं इसे बड़े आनंद से प्रेम से स्वीकार करता हूं। इसलिए जहां आध्यात्मिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वहां तुलसी महारानी होनी ही चाहिए। आप में से कितने भक्तों के घर में तुलसी महारानी नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए, और जो इस तरह हम ऊपर से अच्छी तरह से देखें, तो आज से ही आप शुरू कीजिए, ठीक है, आज से ही तुलसी देवी की सेवा अपने घर में शुरू कीजिए, रोज आप जल अर्पण कीजिए सुबह शाम। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं यहां कि रूस देश जैसे देश में भी, जहां इतना बर्फ गिरता है, जहां महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं दिखाई पड़ती, उष्णता नहीं महसूस होती, ऐसे भी जगह में इस्कॉन के मंदिरों में उन्होंने तुलसी महारानी के लिए एक विशेष कमरा बनाया हुआ है, और विशेष वो लाइट वगैरह लगा के ताकि उष्णता हो, गर्मी हो, और वहां पे प्रकाश हो, हीटर लगाते हैं उस कमरे में, और रोज तुलसी की सेवा करते हैं। वहां भी रोज इस्कॉन के मंदिर में तुलसी पूजा होती है सुबह शाम। तो ऐसे कठिन वातावरण में भी भक्त तुलसी देवी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि वह भक्त जानते हैं कि तुलसी महारानी को प्रसन्न करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करें तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने मात्र से बहुत कुछ फायदा हो सकता है, कितने पाप नष्ट हो सकते हैं। हम रोज सुबह जब तुलसी पूजा करते हैं, फिर बाद में हम प्रदक्षिणा करते हैं, हम एक मंत्र बोलते हैं, आप सब बोलेंगे साथ में वो मंत्र, सबको मालूम है, बोलिए सब, यानी कानी चापा पानी ब्रह्मात्यधिकानी च तानि तानि प्राणाश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी कानी च पापानी, जितने भी सारे पाप हैं, पापानी मतलब बहुवचन, जितने भी पाप हैं, जिस तरह तरह के पाप, पाप तरह तरह के होते हैं ना, ये करने से पाप होता है, वो भी करने से पाप होता है, चोरी करने से पाप, ये भी करने से पाप, तो तरह तरह के पाप, विभिन्न तरह के पाप है, यानी कानी च पापानी, यहां तक कि ब्रह्म हत्या आदि, ब्राह्मण की हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यहां तक कि अगर किसी ने ब्रह्म हत्या भी किया हो, और इस तरह के आदि ब्रह्म हत्या आदि कानी च, ऐसे भी घोर पाप भी किए हो, लेकिन तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं पदे पदे, हर पद हर कदम जब हम लेते हैं तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा में, तानी तानी प्रणश्यन्ति, ये सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज एक ब्राह्मण की हत्या करके प्रदक्षिणा करें और मुक्त हो जाए। परंतु अनजाने में भी अगर कोई पाप हो भी जाए, तो तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा एक इतनी शक्तिशाली है, देखे ढेर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है ना, कितने दुर्भाग्य की बात कि इतना सुविधाजनक मार्ग, इतना कुछ फायदा भगवान ने इतना सुलभ बना दिया है, इसके बाद भी हम तुलसी की सेवा नहीं करेंगे, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और उन घरों में जहां पहले तुलसी महारानी प्रांगण में हुआ करते थे, आजकल प्रांगण में देखते हैं कोई दूसरे ही पेड़ लगाते थे, तुलसी तो रहती ही नहीं है, और जहां तुलसी है कोई सेवा नहीं करता, सूख जाते हैं। तो हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा रोज करनी चाहिए। तुलसी बीज अगर आप बोएंगे, कृष्ण भक्ति मिल जाएगी आपको, भक्ति भावना से करना चाहिए। परंतु और तुलसी महारानी से प्रार्थना करेंगे तो तुलसी महारानी हमको कृष्ण भक्ति अवश्य प्रदान करेंगी। नमो नमो तुलसी प्रिया कृष्णा, कृष्णा प्रियासी, क्योंकि कृष्ण की बहुत प्रिय है तुलसी महारानी, इसलिए हमको अवश्य कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। तो रोज जल अर्पण करना है, करेंगे ना, अभी प्रणाम करेंगे, और आरती अगर सुबह को या शाम को एक बार भी उतार सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और घर के सभी लोगों को इसमें आप शामिल कराइए, भले यहां मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुलसी की सेवा में लगाइए। ऐसे भगवान ने कितने सारे मार्ग दिए हमको, प्रसाद है, दर्शन है, तुलसी की सेवा है। सबकी शिकायत ये रहती ना, हमारे घर में ये भक्त नहीं हो रहे, हमारे घर में वो भक्त नहीं हो रहे हैं, तो कितने सारे तरीके हैं, कितने सारे शस्त्र हमारे पास हैं। एक शस्त्र फेंको, फिर दूसरा फेंको, तीसरा फेंको, आखिर में वो घायल हो ही जाएगा, उसके भौतिक जीवन में उसको वो घायल होकर फिर कृष्ण भक्ति में आ ही जाएगा, सीधे मार्ग से आएगा, टेढ़े मार्ग से आएगा, किसी न किसी तरह से आएगा ही। इसलिए सब अस्त्रों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे घर में, कौन सा एक न एक तो अस्त्र काम करेगा, और कुल मिलाकर इनका असर थोड़े समय के बाद दिखाई पड़ेगा। फिर अगला नियम जो रूप गोस्वामी बताते हैं, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनने में और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सुनने का मतलब केवल ये नहीं है कि आके हम उपस्थित हो जाएं, उपस्थित होकर ध्यान से सुनना, हमारे कर्णों में इन दिव्य वचनों को प्रवेश देना, फिर ये हमारे हृदय में जाकर मंथन करते हैं। दही का मंथन कैसे कर, दूध का मंथन कैसे करते हैं पता है ना, जैसे माता यशोदा करती थी, वैसे श्रीमद् भागवत का के वाणी जो है, भगवान के नाम की वाणी, उनके गुणगान की वाणी, वो हृदय में जाकर मंथन करते हैं, और फिर जो भी अनर्थ है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और केवल अमृत अंदर रह जाता है। जैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया क्षीर सागर का, और उसमें से उनको अमृत चाहिए था, तो अमृत भी कृष्ण भक्ति का अमृत हमारे अंदर है, क्योंकि कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में विराजे हैं। लेकिन कितने पाप भी हैं, तो जब हम मंथन करते हैं तो सारे पाप निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय एक विष आया था, विष का नाम क्या था, हलाहल विष, जबरदस्त भयंकर विष था, और उसका उसकी भक्तों की और देवताओं की असुरों की रक्षा के लिए किसने फिर उस विष का पान किया? शिवजी ने अपने कंठ में रख दिया, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। तो ये सारे अनर्थ बाहर निकल आएंगे, फिर अंत में क्या मिलेगा हमें? अमृत। ये सच्चा अमृत है। जो देवताओं को मिला वो अमृत, वो सच्चा अमृत नहीं है, क्योंकि वो अमृत हमको वास्तव में अमृत नहीं बना सकता। अमृत मतलब क्या? मृत मतलब मरा हुआ, अमृत मतलब जो कभी नहीं मरता है। तो देवताओं का अमृत क्या उनको अमर बना सकता है? नहीं। कितना भी अमृत आदमी पिए, देवलोक का अमृत, तो फिर भी वो अमर नहीं हो सकता। उसके हजारों हजारों सालों की जीवन की अवधि हो सकती है, लाखों सालों की। ब्रह्मा जी की आयु तो कितनी लंबी है, लेकिन फिर भी मृत्यु आना ही आना है उनको भी। तो अमृत नहीं हो सकते वो। लेकिन ये अमृत जो श्रीमद् भागवत के श्रवण से हो सकता है, वाचन से हो सकता है, ये अमृत हमको वास्तव में अमृत बना देगा। मृतो मा अमृत गमय, उपनिषदों में बताया हुआ है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो मृत अवस्था से अमृत अवस्था में आना है तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करता, जो कृष्ण भक्ति का पथ का को स्वीकार नहीं करता, वो मृत है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। उसमें पेड़ में क्या फर्क है, और उसमें और लोहार, लोहार जो होता है उसके जो भस्त्रिक है, वो जो हवा निकालता है उसमें, उसके और हमारे फेफड़ों में अंतर क्या है? दोनों में से हवा निकल रहा है। अंतर ये है कि मनुष्य कृष्ण भक्ति कर सकता है, और कृष्ण भक्ति क्या है ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सब श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। शास्त्र में बताया है कि शास्त्रों का वाचन करना यह भी श्रवण है, और खास करके उन शास्त्रों का अध्ययन करना जिनमें कृष्ण भक्ति का महात्म्य का वर्णन है, जिनको पढ़ने से हमारे कृष्ण भक्ति का विकास होता है, वृद्धि होती है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। वैसे देखा जाए तो तरह तरह के शास्त्र हैं, श्रुतयो विभिन्ना, जैसे ज्ञानी लोगों के लिए उनके शास्त्र हैं, तरह तरह के उपनिषद हैं, योगी लोगों के लिए उनके शास्त्र जैसे पतंजलि योग सूत्र, कर्मकांडियों के लिए उनके शास्त्र, तरह तरह के वेद हैं, धर्मशास्त्र हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये श्रीमद् भागवत है। अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ के या ऐसे किताबों को पढ़ के जो कि इन शास्त्रों के ऊपर आधारित है, तो ये इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसे पुराणों में बताया हुआ है। तो हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, रोज पढ़ें। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मेरे जीवन में केवल एक दुख है कि मेरे शिष्य मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। मैं रात रात बैठकर, कभी रात को सोता भी नहीं हूं, रात भर बैठकर मैं अनुवाद करता हूं, इन किताबों को लिखता हूं, और आप सबको कहता हूं कि इन किताबों को जाकर आप वितरण कीजिए। लेकिन किन के लिए विशेष करके मैंने ये बनाए हैं किताब? मैंने ये सब भक्तों के लिए बनाए, मेरे शिष्यों के लिए बनाए हैं। फिर आशा करता हूं कि आगे चल के भक्त लोग वितरण करेंगे, दूसरों को भक्त बनाएंगे, लेकिन प्रमुखतः ये मेरे भक्तों के लिए है। तो हमारे यहां भी मंदिर में कितने सारे प्रभुपाद के सुंदर ग्रंथ उपलब्ध हैं, श्रीमद् भागवत भी है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कितने दुर्भाग्य की बात है। आप में से कितने भक्तों के घर में प्रभुपाद की किताबें हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, हाथ ऊपर ही रखिए। आप में से कितने भक्तों के घर में है जिनके घर में प्रभुपाद की किताब है, आपने पढ़े हैं? जिन्हें पढ़े नहीं, हाथ नीचे कीजिए। आप देखिए कितने हाथ कम हो गए। तो आपको प्रभुपाद की किताब ग्रंथों को घर में रखने चाहिए, और घर में रख के पढ़ना चाहिए, केवल जैसे है वैसे रखना नहीं चाहिए। भगवत गीता जशी आए तशी, वो जशी आए तशी रखना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बारे में भी पुराणों में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को और अन्य भक्ति के ग्रंथों को अपने घर में बड़े आदर से सम्मान से रखता है और रोज प्रणाम करता है इन ग्रंथों को, उसको बहुत ही जल्दी कृष्ण भक्ति मिल जाती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भले पढ़े भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के घर में अगर ये श्रीमद् भागवत आए भी और अपने घर में वो रखे, बड़े अच्छे ढंग से रखे, ऐसा नहीं कि छुपा के रखे, अच्छे ढंग से उसको रखे और उनको साफ सुथरे जगह में रखे और बड़े भक्ति भाव से उनको देखे, रोज भी उनका दर्शन करे और उनको प्रणाम करे, इतना भी अगर व्यक्ति करेगा तो भक्ति में बहुत प्रगति करेगा। तो सोचिए, अगर ऐसे ग्रंथों को दर्शन करने के अलावा, रोज सम्मान देने के अलावा, प्रणाम करने के अलावा अगर वो पढ़ेगा रोज, तो करोड़ों गुना ज्यादा फायदा उसको हो सकता है। प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो मेरे पुस्तक है ये टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब जानते हैं आप क्या है? आजकल आतंकवादी लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। एक बॉम्ब लगाते हैं लेकिन उसमें घड़ी रहती है, वो उस घड़ी को ऐसे कुछ यांत्रिक ढंग से सेट करते हैं कि जो समय पे वो चाहते हैं उसी समय पे ये बम का विस्फोट होगा। ऐसे किसी भीड़ के जगह में रख के, ट्रेन में, बस में रख के चले आते हैं, फिर वो सुरक्षित है, फिर एक घंटे बाद वो बम का विस्फोट हो जाता है, कितने लोगों की हत्या हो जाती है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि भले जिस आदमी ने लिया है वो पढ़े नहीं, लेकिन उसके घर में अगर पड़ा रहे वो किताब, आज नहीं तो कल विस्फोट होगा उसका। किस तरह का विस्फोट? उसका भौतिक जीवन का विस्फोट, उसका भौतिक जीवन चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो किताब उठाएगा। अगर वो नहीं उठाएगा तो उसका बेटा उठाएगा, उसकी और कोई उसका रिश्तेदार उठाएगा। ऐसे इन किताबों को उठाकर कोई ना कोई पढ़ेगा, कृष्ण भक्त बन जाएगा और फिर भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा। कितने भक्तों के जीवन में ऐसे ही उदाहरण है, हमारे निजी उदाहरण भी ऐसे ही है कि हमने भी किताब लेके रखे थे वहां और एक दिन कुछ काम नहीं था, उठाया और फिर विस्फोट हो गया। तो इस तरह से ये किताबों की कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमको ये किताबें जो हैं बड़े अच्छे ढंग से रखने चाहिए, इधर उधर फेंक देना नहीं चाहिए। अन्य धर्मों में आप देखेंगे तो अपने धार्मिक ग्रंथों को कितने आदर से वो रखते हैं, कपड़े में रखते हैं, अच्छे साफ सुथरे जगह में रखते हैं, सर पे उसको छूते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे हमें बहुत कृपालु रहना, इसलिए जगह जगह बांटना है। इसकी वजह से कोने कोने में ये पुस्तकें पहुंच गई हैं, शायद ऐसे भी लोगों के पास पहुंच गई हैं जो कि इनका सम्मान करना जानते नहीं है, इनका मूल्य समझते नहीं है। लेकिन आशा ये है, क्योंकि श्रीमद् भागवत बहुत कृपालु है, खास करके कलयुग में, इसलिए कृपा करेंगे ये ऐसे लोगों के ऊपर। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। जब नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा कि अब श्री कृष्ण तो अपने धाम में चले गए, उनके साथ में धर्म ज्ञान इत्यादि सिद्धांत भी चले गए, तो अब कलयुग में मार्ग क्या है उन लोगों के लिए जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए उपाय क्या है? तो उत्तर क्या था? कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने धाम में लौटकर चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, साथ में धर्म ज्ञान इत्यादि लेकर चले गए, लेकिन कलो नष्ट दृशाम एश, कलयुग के लोगों के लिए जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसे अंधे लोगों के लिए प्रकाश, एक सूरज आ गया है, पुराण अर्क है, अधुना उदित है, अर्क मतलब सूरज। तो ये पुराण, ये श्रीमद् भागवत क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। तो कलयुग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश मार्गदर्शन देने के लिए ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत को अगर हम रोज पढ़ेंगे, अपने घर में रखेंगे, सम्मान करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, तो बहुत ही जल्दी हमारा आध्यात्मिक अंधकार जो है जीवन में वो नष्ट हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत को अपने घर में रखने का फायदा है और पढ़ने का फायदा है। आप में से कितने भक्तों के घर में श्रीमद् भागवत नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए। अरे अरे, इतने सारे। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए धीरे 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 से श्रीमद् भागवत को घर में रखने के लिए और पढ़ने के लिए, और घर में भी बड़े अच्छे ढंग से इनको आप रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। देखिए, अन्य धर्मों में उनके एक ही ग्रंथ है, लेकिन हमारे धर्मों में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कितने सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ है। रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता है, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ, कितना गहरा ज्ञान है इन सब में। इनका फायदा हमको उठाना चाहिए। पढ़ने के लिए कोई साहित्य की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने की इच्छा की कमी है, रुचि की कमी है। तो हम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए रोज। तो आप सब रोज प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे तो अवश्य, अगर आप श्रीमद् भागवत खरीद नहीं सकते, आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो छोटे छोटे किताब और भी हैं, उनको ले लीजिए और उनको लेकर आप धीरे धीरे से पढ़िए, और ऐसा करके आप ये भागवत का सार भी आप समझ पाएंगे। तो आगे चल के अगर रुचि नहीं हो रही है इन किताबों को पढ़ने के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? हमको ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आना चाहिए। अगला नियम है, नियमित मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। अभी रहना तो मुश्किल है ना, जाकर वहां अपने कुटुंब को छोड़ के जाना, अपने व्यवसाय को छोड़ देना और जाके वृंदावन में, मथुरा द्वारका में जाके रहना, कितने लोग कर सकते हैं? आप छोड़ छाड़ के जा सकते हैं सर? तैयार है? मुश्किल है। जो लोग कर सकते हैं मार्गदर्शन के नीचे करें, वो अलग बात है, परंतु वास्तव में भगवान का मंदिर जो है वो धाम से कोई कम नहीं है। अगर धाम में रह के भी कोई व्यक्ति पाप करे तो क्या फायदा है? आप में से सब वृंदावन द्वारका मथुरा गए हुए हैं ना? आप देखते हैं ना, आजकल वृंदावन मथुरा में भी सिनेमा के घर हैं, वहां पर भी शराब की दुकानें हैं, वहां पर भी मांस बेचा जाता है, वहां पर भी कितने सारे पाप होते हैं। तो ऐसे कार्य जाके धाम में करना क्या फायदा है? इससे अच्छा ये है हम बेलगाम में रहें, बेलगाम में रहकर बेलगाम को धाम बनाएं, यहां मंदिर में आके, जो कि वास्तव में वैकुंठ जगत है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण विराजे हैं, गोकुल आनंद, गोकुल में आनंद ले रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो नंद का आनंद ले रहे हैं, वृंदावन गोकुल का आनंद ले रहे हैं, इसलिए इनका नाम है गोकुल आनंद। और यहां जो आते हैं गोकुल में, इस मंदिर गोकुल आनंद मंदिर में, उनको भी आनंद देते हैं। तो ये है गोकुल आनंद शब्द का तात्पर्य। तो यहां ये मथुरा है, वृंदावन है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है ये मंदिर। तो यहां इसी मंदिर में आके भक्तों के संग में हम कृष्ण नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, और ऐसे भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं, ऐसे हमारी रुचि जागृत हो जाएगी। और अगर फिर भी रुचि जागृत नहीं हो रही है प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो क्या उपाय है? अगला नियम बहुत महत्वपूर्ण, वैष्णवों की सेवा करें। ये कौन सा नियम है बोलिएगा?
वैष्णवों की सेवा करें, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। श्री संप्रदाय में इस सिद्धांत के ऊपर इतना जोर देते हैं कि कहते हैं कि बाकी कोई व्यक्ति दूसरा कुछ भी नहीं करे, केवल वैष्णवों की सेवा करते रहे, वो वापस भगवान के धाम में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज से बोले चलो फिर जप क्या करें, जप माला साइड में छोड़ दें, कीर्तन क्या करें, कीर्तन भी इस साइड में छोड़ दें, हम केवल वैष्णव सेवा करेंगे। लेकिन वैष्णव सेवा करने का मतलब क्या है? वैष्णव सेवा का मतलब एक कि हम वैष्णवों के आदेश का पालन करें, हम वैष्णवों को प्रसन्न करें। तो वैष्णव कब प्रसन्न होंगे? जब वो देखेंगे कि हम कितने ध्यान से भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं। जब वैष्णव देखेंगे कि हमारे अंदर भगवान के नाम के प्रति रुचि जागृत हो रही है, तब वो वास्तव में प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और जब वैष्णव हमारे ऊपर खुश होंगे तो और क्या चाहिए हमें जीवन में? आजकल लोगों को, बड़े बड़े आदमियों को, मंत्रियों को, इनको उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णवों को प्रसन्न करना। और वैष्णव कोई भौतिक चीज से प्रसन्न नहीं होंगे। जब वो देखेंगे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैष्णवों को, वैष्णवों की सेवा कब की जाती है? जब हम ऐसे कार्य करेंगे जो अन्य वैष्णव करते हैं, जब हम ऐसे कार्य करेंगे जिनको करने से वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे नाम का संकीर्तन, कथा का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, ये सब चीजें हैं। भगवान रोज मंदिर में आके भगवान के एक बार कम से कम दर्शन करना, और जितने भी ये नियम है इनका पालन करना। साथ साथ वैष्णव सेवा का मतलब भी ये है कि हम अन्य वैष्णवों के सामने बिल्कुल नम्रता से पेश आए, वैष्णव दासानुदास बने, वैष्णवों के दासों के दास बनके। छोटी सी छोटी सेवा, एक साधारण से साधारण भक्त की सेवा। ऐसा नहीं कि केवल हम वरिष्ठ भक्तों की सेवा करेंगे, नहीं, नए से नए साधारण से साधारण भक्तों की सेवा भी हमें करनी चाहिए। छोटी सी छोटी बातों में भी भगवान ये देखते हैं कि आप साधारण से साधारण भक्तों की भी सेवा कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप साधारण भक्तों की भी सेवा करेंगे तो वरिष्ठ भक्तों को कितना और सेवा करेंगे आप? इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए, सबके सामने हमें दास बन के रहना चाहिए। ऐसी भावना अगर हमारी बनी रहेगी तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और फिर वासुदेव की कथा सुनने के लिए रुचि जागृत हो जाएगी। कौन सा श्लोक है? शुश्रुषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। इस श्लोक में, श्रीमद् भागवत के श्लोक में यह रहस्य बताया हुआ है कि अगर हमने वैष्णवों की सेवा की, महत्सेवा, तो हमें वासुदेव के कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हमको पढ़ने के लिए रुचि नहीं आती है, हम किताब खोलते हैं सो जाते हैं, हम क्लास में बैठते हैं प्रवचन सुनते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं, हमको जबरदस्ती अपने आप को खींच के लाना पड़ता है प्रवचन के लिए, थोड़ा कुछ कारण मिल गया तो हम प्रवचन में बाहर दूसरे रास्ते में दूसरे काम करने के लिए चले जाते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि हम क्लास में नहीं बैठे, प्रवचन में नहीं बैठे, और ढूंढते कि कोई एक दूसरी सेवा मिल जाए जिसके हमें अच्छा कारण मिल जाएगा हम प्रवचन में नहीं बैठे। और कई बार यह भी एक कारण आ जाता है मन में, हम जप कर रहे हैं, नींद लग रही है, किताब पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, तो क्यों ऐसे होता है, क्या कारण हो सकता है, इसके लिए उपाय क्या है? कारण जो भी हो लेकिन उपाय है। उपाय क्या है? वैष्णव सेवा। अगर हम वैष्णव सेवा करेंगे तो धीरे धीरे से ये रुचि जागृत हो जाएगी, फिर तेजी से हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। इस तरह से रूप गोस्वामी यहां पर वैष्णव सेवा का महत्व बता रहे हैं। वैष्णव को भागवत भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत को जो अपने जीवन में स्वीकार करता है वो भी भागवत है। तो भागवत दो तरह के होते हैं, एक पुस्तक भागवत श्रीमद् भागवत जिसके बारे में हम सुन चुके हैं, और दूसरे हैं व्यक्ति भागवत जो चलते फिरते भागवत है। तो दोनों की सेवा करनी चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। रोज सुबह भागवत क्लास के पहले जो प्रवचन करता कार होते हैं वो बोलते हैं ये श्लोक। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र चीजें हमारे हृदय में हैं वो प्राय नष्ट हो जाते हैं, क्या करने से? नित्यं भागवत सेवया, रोज भागवत की सेवा करने से, वैष्णवों की सेवा और श्रीमद् भागवत की सेवा। ऐसा नहीं बताया है कि वार्षिक सेवा या साप्ताहिक सेवा, नित्यम, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार हम भागवत की सेवा करेंगे, कम से कम तो उतना तो होना ही चाहिए, परंतु रोज भागवत की सेवा होनी चाहिए, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत की। भगवती उत्तम श्लोके, तो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठा वाली भक्ति, निष्ठावान भक्ति हमारे हृदय में हो जाएगा। वो लड़खड़ाता हुआ जो, ऐसी भक्ति नहीं जो आज हम करेंगे कल भूल जाएंगे, कल आज मंदिर कल सिनेमा और परसों फिर से मंदिर और उसके बाद वाले दिन फिर क्रिकेट स्टेडियम में, नहीं। नैष्ठ की भक्ति, नैष्ठ की भक्ति मतलब जिसमें हमारी निष्ठा है, हम डावाडोल नहीं होते, बड़े दृढ़ता से हम भक्ति करते हैं। तो ऐसी भक्ति अगर हमें चाहिए, ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति हमें करनी है, तो हमें रोज नित्यम भागवत सेवया करना होगा। तो ऐसे रूप गोस्वामी यहां पर हमें आदेश देते हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं, अब थोड़े ही नियम बच गए, अब आने वाले रविवारों में इनको भी हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टीका प्रश्न है? श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए कुछ पात्रता चाहिए क्या? वैसे अगर आप प्रभुपाद के छोटे छोटे किताब पहले पढ़ लें और भगवत गीता आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, फिर इसके बाद आप श्रीमद् भागवत पढ़ पाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे श्रीमद् भागवत ये मिस्री के बराबर है, मिस्री जानते हैं? मिस्री खड़ीसाकर, खड़ीसाकर कैसा होता है स्वाद? कैसा होता है? कौन से तरफ से? अब ऐसे खाएंगे मीठा होगा कि वैसे खाएंगे तो मीठा होगा? हर तरफ से मीठा है। उसी तरह श्रीमद् भागवत भी आप कहां से भी चखें, कब भी चखें, आपको मीठा लगेगा। परंतु अगर इसका मिठास आपको ज्यादा बढ़ाना है तो भगवद गीता अन्य ग्रंथों को पढ़ के थोड़ी बातें समझ के फिर अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा उसमें रुचि समझ आएगी। ठीक है? तो प्रश्न, क्या भगवद गीता पढ़ने के बाद ही श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए? कोई दूसरे प्रश्न का जवाब भी इसमें आ गया। जी का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, हो और पूरी तरह सूख गया हो तो क्या करें? वैसे सूख गया हो इसका मतलब है कि अभी तुलसी महाराज नहीं रही अंदर, वो चली गई। अगर वो प्राण नहीं रहा आत्मा अंदर तो फिर वो खुद ब खुद, अब उनको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उनको जमीन में ही रख सकते हैं और इस तरह से नया पौधा डाल सकते हैं, इससे तुलसी महारानी की सेवा हो सकती है। नैमिषारण्य कहां है? नैमिषारण्य कानपुर के पास में है, उत्तर प्रदेश में। कभी एक दिवस वहां यात्रा निकालेंगे। श्रीमद् भागवत
में 18 स्कंद हैं, एक एक मिलते नहीं, क्या करें? 18 स्कंद नहीं, 12 स्कंद हैं, लेकिन 18 किताबों में हैं। आजकल शायद वो 18 होंगे, 18 के संपादन किया है। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा। अभी देखिए, लोग घर खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कितना कर्ज उठाते हैं, है ना? लाखों में कर्ज उठाते हैं। श्रीमद् भागवत खरीदने के लिए अगर थोड़ी कठिनाई हमको करनी पड़े, क्या तकलीफ है? रोज 100-100, हर महीने 100-100 रुपए लेके, किराए पे लेके हम कर सकते हैं अगर चाहिए तो। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि किराए पे लीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि संभव है, जिसको चाहिए, जिस चीज को हम मूल्यवान समझते हैं, कुछ ना कुछ करके हम ले लेते हैं। तो अगर आपके घर में भी श्रीमद् भागवत हो तो कितना अच्छा होगा। जब चाहे आप पढ़ सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है आप। मैं ऐसे हमारे कृष्ण रसायन पुस्तकालय से खबर आई है कि मराठी में एक एक किताब भी उपलब्ध है श्रीमद् भागवत का। अगला प्रश्न है, तुलसी महारानी को तोड़ने की क्या विधि है? तुलसी महारानी को नहीं तोड़ना है, केवल पत्तों को निकालते समय हमें स्वच्छ अवस्था में जाना है, स्नान करके, और सबसे पहले तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी है। वैसे मंत्र हैं, आप में से जो ज्यादा इसमें करना चाहते हैं आप मंत्रों को सीख सकते हैं। मंत्रों को बोलकर, या मंत्र नहीं जानते हैं तो केवल क्षमा याचना कर सकते हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवा के लिए आपके पत्र चाहते हैं, आपके पत्र चाहते हैं, तो कृपा आपको हमें वो पत्र दीजिए। आप पत्र निकालते समय आपको थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा दर्द होगा, उसके लिए कृपया आप हमें क्षमा कीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके फिर हमें हल्के से निकालना चाहिए। तुलसी महारानी पेड़ को ऐसे वैसे हिलाना, कष्ट देना नहीं चाहिए। और जब हम तुलसी की प्रदक्षिणा भी करते हैं तो ऐसा नहीं हमारे कपड़े घिसे, तुलसी महारानी को इधर उधर करें, नहीं, थोड़ा अंतर में रहना चाहिए। इस तरह से हमें करना चाहिए। द्वादशी के दिन में नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा भी विधि है। भौतिक जीवन बनाने के लिए तो हम भक्ति करते हैं, मतलब भौतिक जीवन बनाने के लिए, भौतिक जीवन में बढ़ने के लिए आ गए। खैर, भक्ति में आने के बाद हमारी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। भगवान कृष्ण के पास आते समय हमें भौतिक इच्छा लेकर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं नहीं जा रही हैं तो कोई बात नहीं, आइए भगवान कृष्ण के पास, उनकी सेवा करते रहिए। भगवान कृष्ण की कृपा से भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे से नष्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न, हमारे घर में तुलसी पौधा है, उसको प्रदक्षिणा करने के लिए नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? क्यों नहीं आता है? आप ऐसे तुलसी महारानी को रखिए जहां प्रदक्षिणा कर सकेंगे, ऐसे तुलसी महारानी को रखिए अपने घर में। या तुलसी महारानी अगर केवल कुंडी में है, मटके में है, तो उनको उठाकर ऐसे स्थान में रखिए केवल पूजा के समय, फिर वापस उस स्थान में रख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। शालिग्राम की पूजा स्त्रियों ने के लिए तत्सालते का, कि अपन घरात आणली तर चालते का। यहां तक अब के लिए कह दें कि पहले घर में सभी तस्वीर लाएं, केवल विग्रह नहीं लाएं, कोई मूर्ति नहीं लाएं, कोई पहले तस्वीर को कैसे पूजा करना है ये ठीक से करें, जो पद्धति है उसको अच्छी तरह से सीखें, फिर गौर निताई मूर्ति लानी है तो गौर निताई की मूर्ति आए, उसके बाद शालिग्राम अगर लाना है तो आप लाइए, जब आपको थोड़ा बहुत मालूम है कैसे करना, फिर भक्ति भाव से आप इनकी विधि पूर्वक इनकी सेवा करें और रोज नियमित रूप से करें। कई भक्त जो करते हैं, बहुत सुंदर शालिग्राम को भी सजाते हैं,
आंखें, नाक और मुंह होता है, मुकुट डालते हैं, चंदन से उनके अलग अलग मुख के तस्वीर वगैरह निकालते हैं, बहुत सुंदर ढंग से सजाते हैं, बांसुरी भी लगाते हैं शालिग्राम के लिए। तो जो ऐसे भक्त कर रहे हैं पूजा, अगर उनकी उनके घर में जाके आप देखें या मंदिर में जब हो रहा है तो फिर आप भी कर पाएंगे इसको। हाँ, यहाँ किसी का प्रश्न था। तो शालिग्राम हर कोई कर सकता है कि नहीं? शालिग्राम की विधि बहुत सरल है, शालिग्राम बड़े कृपालु हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी